ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर सम्मेलन चल रहा है, अनेक संत महात्माएं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। भारतवर्ष के हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन आज मैं आपको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास सुनाना चाहती हूँ, जिसको हम कहते हैं यज्ञ इतिहास। क्योंकि परमात्मा ने केवल विश्वविद्यालय नहीं रचा है, ये तो है ही, जिसको हम कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लेकिन साथ साथ ये एक परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार भी है, और फिर इसके साथ साथ एक यज्ञ भी है। जैसे उस यज्ञ में आहुति दी जाती है, वैसे भगवान ने ये यज्ञ रचा है, जिस यज्ञ के माध्यम से इस सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है और फिर से सतयुगी दुनिया आती है। अवश्य आपके मन में आएगा कि इनका जो स्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा वो कौन थे। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने पिता श्री ब्रह्मा बाबा से पालना ली है, क्योंकि जैसे बताया मैं 1960 में इस संस्था से जुड़ी, जब मैं मात्र 12 वर्ष की थी। अपनी माँ के साथ सबसे पहले मुंबई में आई और पढ़ाई के साथ साथ ये ईश्वरीय विद्या भी ग्रहण की। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा को हमने बहुत नज़दीक से देखा, तो वो अंदर की भावनाएं जो है मुझ में वो भी कुछ आप तक रखना चाहूंगी। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा की वो अद्भुत जीवन कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, कैसे साधारण मनुष्य से वो ब्रह्मा बन गए। ये ब्रह्मा टाइटल उनको उन्होंने खुद अपने आप को नहीं दिया, लेकिन परमात्मा ने उनको यह टाइटल दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापति तो हम सुनते आए हैं, लेकिन प्रजा का पिता, सारी सृष्टि का पिता, इसलिए हम कहते हैं हमारे तीन पिता है। एक तो शरीर का पिता जिसने देह को जन्म दिया, दूसरा आत्मा का पिता जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, और तीसरा यह प्रजा पिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि की रचना की। और 1936 में जब इनकी आयु 60 वर्ष की हुई, 1936 में, क्योंकि 1876 में उनका जन्म हुआ और 1936 में जब उनकी आयु 60 वर्ष की हुई, तब उन्होंने उनको अनेक प्रकार के दिव्य साक्षात्कार हुए, जिन दिव्य साक्षात्कारों के माध्यम से कैसे अपना जीवन उन्होंने परमात्मा को अर्पित किया। और एक बीज उन्होंने इस यज्ञ में डाला, एक बीज अपने तन का, मन का, धन का, और आज उस बीज का इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 137 देशों में शाखाएं हैं। इतना बड़ा वट वृक्ष है और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित हैं, और आप जैसे अनेक महानुभाव, अनेक परिवारजन, अनेक संत महात्माएं भी यहाँ नियमित आते रहते हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लेते हैं और जीवन में राजयोग का अभ्यास कर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा का पूर्व नाम दादा लेखराज था। दादा सिंधी भाषा में बड़े भाई को दादा कहते हैं और बड़ी बहन को दादी कहते हैं। जैसे हिंदी में दीदी कहते हैं बड़ी बहन को, तो सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, इसलिए हम दादी शब्द यूज करते हैं यहाँ, जो हमारी बड़ी बहनें हैं, और बड़े भाई को दादा। तो बुजुर्ग तो थे ही, तो दादा लेखराज के नाम से वो प्रसिद्ध तो थे, लेकिन आप बहुत बड़े व्यापारी थे, जौहरी थे, हीरे जवाहरातों के जेवर आप बनाते थे, बेचते थे। आपका संबंध उस समय के राजाओं महाराजाओं के साथ भी था, अंग्रेजों के साथ भी था, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था। तो लखीराज बाबू के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध थे हैदराबाद सिंध में। तो 1936 में तो सिंध भी भारत का हिस्सा था, तो वो जो अविभाजित भारत था वहाँ सिंध में आपका जन्म हुआ था। आप व्यापारी के साथ साथ एक कुशल गृहस्थ में भी थे। 5 बच्चे थे उनके, 3 बेटियां, 2 बेटे और पोते दोते सब थे, बहुत बड़ा परिवार था। और कैसे जब उन अपने जीवन में अपने बहुत सारे महान कार्य उन्होंने किए, तो जितना ही बाबा धनी थे उतना ही बाबा बहुत बड़े दानी थे। जो भी कभी हाथ खाली नहीं जाता था, जो भी उनकी मांग होती थी बाबा पूर्ण करते थे, इनकी इच्छा पूरी करते थे। और उन अपने घर में वो संत महात्माओं को भी बुलाते थे, बड़ा घर था उनका हैदराबाद सिंध में, तो वो संत महात्माएं उनके घर में रहते थे और सत्संग बाबा कराते थे। और दूर दूर से भाई बहनें लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए उन महात्माओं का। पर जितने ही धनी थे दानी थे उतने ही बड़े भक्त भी थे, विष्णु की भक्ति करते थे, कट्टर वल्लभाचारी पक्के वैष्णव बाबा थे। तो ये सब कुछ उनके जीवन में होते हुए भी एक कमी जो उनको खलती थी वो थी कि वो सत्य को जानना चाहते थे, सत्य को जानना चाहते थे। सत्य क्या है, हम कौन हैं, ईश्वर कौन है, हम क्यों इस संसार में आए, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में थे। और अक्सर करके अपने गुरु से ये बातें पूछते थे, लेकिन जो उनको संतोषजनक जवाब चाहिए था वो नहीं मिला। विष्णु की भक्ति भी करते थे लेकिन मन तो चंचल था ही, संसारी तो था ही। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले सत्य को जानने की, लेकिन वो खोज उनकी जारी ही रही। तो एक दिन की बात है, जब बाबा को एक बहुत सुंदर विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, जो उनके इष्ट थे उनका साक्षात्कार हुआ, तो 4 भुजाधारी कैसे उनके सामने आके उपस्थित हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनको एक वरदान दिया। वरदान बहुत सुंदर था, अहम चतुर्भुज तत् त्वम, जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूं तुम भी मेरे हो। और बाबा ने देखा कि विष्णु के कई मंदिर है भारत में, तो एक एक रूप उनके सामने आता गया विष्णु चतुर्भुज का। और हर स्वरूप ने विष्णु के एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और बाबा देखते गए कैसे वो साक्षात्कार करते जा रहे थे विष्णु के कई रूपों का। हाँ, कई मंदिर है विष्णु के, उनका अलग अलग श्रृंगार है, वो सब देखते देखते जैसे बाबा इतने मग्न हो गए जो बात मत पूछो। तो जब बाबा वापस होश में आए तो बाबा के मन में एक प्रश्न उठा कि ये कैसा वरदान मुझे भगवान ने दिया। वैसे किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो अधिकतर उस इष्ट के द्वारा जो वरदान मिलता है वो यही मिलता है, हाँ, जिसमें उनको कुछ इच्छा होती है तो वो इच्छा पूरी हो उसके लिए वो भक्ति करते हैं। तो अधिकतर जो वरदान मिलता है वो मिलता है तथास्तु, अर्थात वैसा ही होगा तथास्तु। लेकिन ऐसा वरदान इनको नहीं मिला क्योंकि इनके मन में कोई इच्छा नहीं थी, केवल एक ही इच्छा थी सत्य को जानने की। तो जब ये वरदान मिला अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो इनके मन में प्रश्न उठा मैं इन जैसे कैसे हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो बाल बच्चों वाला हूँ, मैं तो ये संसारी हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तो एक भक्त हूँ, मैं तो एक दास हूँ, मानो जैसे भक्त लोग अपने आप के लिए कहते हैं, तो मैं इन जैसा कैसे हूँ, क्योंकि वरदान मिला अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो। अब इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए बाबा अपने गुरु के पास गए। तो गुरु से जब ये प्रश्न किया तो गुरु ने जो समझा उस अनुसार उनको जवाब दिया कि हो सकता है भगवान, और वो जो बड़ा काम आपसे करवाना है उसके लिए आपको वरदान दिया कि आप मेरे जैसे हो, क्योंकि आपको मेरा काम करना है। तो बाबा को आया मुझे भगवान का काम करना है, कौन सा काम, मैं तो कर ही रहा हूँ, भक्ति तो कर ही रहा हूँ, जितना हो सके दान पुण्य भी करता हूँ, तो और मुझे क्या करना है भगवान, वो ही मुझे बताओ, मैं तैयार हूँ, जो कुछ आप कहेंगे मैं करने लिए तैयार हूँ। तो गुरु ने कहा कि उसके लिए फिर आपको कुछ और एकांतवास में जाना पड़ेगा, हो सकता है आप एकांतवास में जाएंगे तो भगवान आपको और कुछ संकेत देंगे कि आपको क्या करना है और आगे। तो एकांतवास में कहाँ जाएंगे, हैदराबाद सिंध में रहते, हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे, अंग्रेज और राजा महाराजा उनके ग्राहक थे, बहुत बड़ी बिजनेस थी, उदयपुर के राजा यहाँ तक कि नेपाल के राजा, मानो चारों तरफ उनका आना जाना होता था, वो उनको निमंत्रण देते थे क्योंकि जेवर बेचते थे, और रानियां तो आएगी नहीं दुकानों में, तो खास बाबा जाते थे उनके महलों में और वो जेवर बेचते थे। तो अगर मुझे एकांतवास में जाना है तो कहाँ जाऊँ, तो बाबा के मित्र थे जो बनारस में रहते थे, तो बाबा को लगा मैं बनारस जा करके मैं वहाँ एकांत का अनुभव करूँ उस मित्र के पास। तो एक दिन की बात है, बनारस बाबा गए और वहाँ पर रोज संध्या के समय उनके मित्र की बहुत बड़ी कोठी थी और बड़ा बगीचा था बनारस में, तो वहाँ शाम को बैठकर पेड़ के नीचे विष्णु का ध्यान करते थे। तो एक दिन अनायास उनको इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, ये पूरी कलयुगी दुनिया जैसे खत्म हो गई, तीन रूपों से विनाश देखा, एक रूप था अणु युद्ध के रूप में, और बाबा ने देखा कैसे एक मिसाइल आया और वो बम गिराया और आग लग गई और सारा शहर एक आग के लपेटों में आकर खत्म हो गया, तो एटॉमिक वॉर। फिर दूसरी तरफ बाबा ने देखा सिविल वॉर, गृह युद्ध, अणु युद्ध तो बाबा ने देखा, उसके बाद गृह युद्ध देखा, कैसे लोग एक दो को मार काट रहे हैं, रक्त की नदियां बह रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, बंदूकें चल रही है, मानो देखते देखते बाबा ने देखा खून की नदियां, चारों ओर खून ही खून और लाशें ही लाशें। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया ये मैं क्या देख रहा हूं। और उसके बाद फिर तीसरा रूप विनाश का देखा, उसने प्राकृतिक आपदाएं देखी, पांचों ही तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांचों ही तत्व इतना कहर मचा रहे थे जो देखते ही देखते बाबा ने देखा एकदम प्रलय हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया। बाबा को तो रोना आ गया, हे भगवान क्या मैं ये स्थिति होगी इस संसार की, अगर ये सब नष्ट ही हो जाएगा तो हे भगवान ये दुनिया आपने बनाई क्यों, प्रश्न उठेगा ना, ये खत्म हो जाएगा तो फिर बनाया ही क्यों, जबकि पता है खत्म होना है। तो हे भगवान मुझे क्या करना है आप वो भी तो बताइए, क्योंकि उनके उनको गुरु ने कहा कि भगवान आपको आदेश देंगे कि आपको क्या करना है, तो भगवान मुझे भी वो आदेश दीजिए मैं क्या करूं, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। तो उनको समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन उसके बाद बाबा को बहुत वैराग आ गया, संसार से इतना वैराग आ गया जो बात मत पूछो। फिर बाबा तो उसी विष्णु के ध्यान में थे, तो अचानक एक दिन बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ, वो ज्योति का धाम, परम धाम, अखंड ज्योति का महतत्व जिसको हम ब्रह्म महतत्व कहते हैं, और उस परम धाम शांति धाम मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहो, अखंड ज्योति ही ज्योति चारों तरफ देखी, उसमें छोटे छोटे सितारे देखे, ये सब आत्माएं थी, और वो सितारे एक उल्टे वृक्ष के समान वो कैसे दिखाई दी, इसमें जो ऊपर था वो बड़ा सितारा था और नीचे छोटे छोटे सितारे वृक्ष की तरह, जैसे गीता में भी आता ऊर्ध्व मूल अधःशाखा, मूल ऊपर और शाखाएं नीचे, तो ये सब आत्माएं देखी और परमात्मा एक परम ज्योति वो ऊपर। और फिर धीरे धीरे जैसे बाबा उसमें मग्न हो गए देखते देखते, तो फिर बाबा ने देखा कि उस ज्योति के पेड़ से कहेंगे वृक्ष से वो छोटे छोटे सितारे धीरे 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 नीचे उतरते गए, नीचे उतरते गए, और जैसे नीचे आते गए तो बाबा देखता रह गया कि ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहे हैं। और देखते देखते बाबा ने देखा इस धरती पर वो सितारे पहुंचे और एक एक सितारा एक एक देवता का रूप धारण करता गया, ये बाबा ने साक्षात्कार में देखा, एक एक देवी एक एक देवता का रूप धारण करता गया, और देखते देखते सारा संसार जो बिल्कुल जैसे जलमग्न हो चुका था नष्ट हो चुका था वो धीरे धीरे वापस अपने सुंदरतम स्वरूप में आ गया, पांचों ही तत्व इतना सुंदर स्वरूप बन गए जो बाबा तो उस संसार को देखता ही रह गया कि ऐसा संसार। और फिर बाबा ने इसी इसके साथ साथ देखा कि एक बहुत सुंदर महल ही सोने का महल, उसमें दीवारों पर हीरे जवाहरा जड़े हुए ऐसा महल देखा, और उसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो सिंहासन पर विराजमान, और कैसे वो सिंहासन से बाहर आए महल से और चारों ओर बगीचा में फव्वारे चलने लगे, सुगंधी सुगंध फैल गई, खुशियां ही खुशियां हुई, और बाबा देखते रह गए देखते रह गए। और उसी वक्त बाबा को एक आकाशवाणी आई, आकाशवाणी बाबा ने सुनी, वो आकाशवाणी क्या थी, लखीराज उठो जागो, उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आने वाली है, और ये सतयुगी दुनिया आपको बनानी है, आपको बनानी है। अब ये बाबा के कानों में शब्द पड़े और गूंजने लगे, ऐसी सतयुगी दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी शक्ति है जो मैं दुनिया को बदल कर उसको स्वर्ग जैसा बना दूं। अब वो तो उस समय उनको समझ में नहीं आया, लेकिन वैराग्य तो और प्रबल हो गया। इतना वैराग्य जो बात मत पूछे। तो बाबा को लगा कि मुझे उसके लिए कुछ करना होगा, भगवान ने काम तो दिया लेकिन कैसे करूंगा वो मुझे पता नहीं है, पर कम से कम जो मेरा व्यापार है इतना बड़ा उसको तो मैं वाइंड अप कर लूं, क्योंकि ये सब कार्य करना है तो व्यापार तो साथ साथ नहीं कर सकता हूं। और उनके जो पार्टनर थे, भागीदार, वो कलकत्ता में रहते थे और वो बुला रहे थे क्योंकि निमंत्रण मिला था, कई राजाएं महाराजाएं थे, 1936 की बात है ये। तो बाबा को लगा मैं अभी जाता हूं और मैं अपना बिजनेस वाइंड अप करता हूं, क्योंकि बाबा को लगा ये हीरे जवाहरात क्या है, तो पत्थर है। इतना दृष्टिकोण बाबा का बदल गया। तो कलयुगी दुनिया का महाविनाश और साथ साथ फिर नई सत्युगी दुनिया जो बाबा ने देखी, उसके बाद जो वैराग्य आ गया तो कहा कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा बनारस से कलकत्ता चले गए क्योंकि वहाँ उनकी दुकान थी, बहुत बड़ा शोरूम था। तो बाबा ने अपने पार्टनर को समझा दिया कि अब मेरे से ये व्यापार नहीं होगा क्योंकि ये हीरे मुझे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, तो अब इसलिए मुझे आप मैं अभी बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ, जो मेरा हिस्सा है वो लेकर फिर वापस हैदराबाद जाऊंगा। तो बाबा ये सब खत्म करके हैदराबाद गए, परंतु इसी बीच बाबा को तार आई, क्योंकि उन दिनों में ये ईमेल और व्हाट्सएप आदि तो कुछ थे नहीं, फेसबुक कुछ नहीं, तो तारें चलती थी, टेलीग्राम। तो एक टेलीग्राम आई उनके घर से कि आप आइए, और क्योंकि पोते का जन्म हुआ है और बाबा अपने पोते का जन्मदिन पर बहुत बड़ा पार्टी करते थे, लेकिन कभी भी कोई नॉन वेज या शराब वो कुछ नहीं, लेकिन उनके ग्राहक तो थे तो उनको बुलाते थे बाबा, तो पोते का जन्म हुआ है इसलिए आप वापिस आओ। तो बाबा ने वो तार पढ़ी और तार का जवाब तार में दिया, टेलीग्राम में, बहुत सुंदर शब्द, नशे के शब्द। अल्लब को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ को और हुआ रेल का राही। ये कविता के रूप में बाबा ने टेलीग्राम किया। अलफ को अल्लाह मिला, अब परिवार वालों ने कुछ समझा नहीं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब था अलफ माना मैं, बाबा ब्रह्मा बाबा, तो अल्लाह को तो अल्लाह मिल गया, बे को मिली झूठी बादशाही, क्योंकि जो दुकान थी वो पार्टनर को दे दी, तो वो पार्टनर ने दुकान ले ली और इनका जो इनका हिस्सा था वो लिया। तो बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ को, आपकी तार हमको मिली, हुआ रेल का राही, माना ट्रेन से मैं कलकत्ता से हैदराबाद सिंध आ रहा हूँ। तो भाई परिवार वालों ने कुछ समझा नहीं, लेकिन अंतिम वाक्य जरूर समझा, हुआ रेल का राही, माना मैं ट्रेन से आ रहा हूं। तो जैसे बाबा वापस पहुंचे बिल्कुल बदल गए एकदम, धोती कुर्ता वो तो वैसे भी पहनते थे बाबा, धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदल गए और उनकी दृष्टि वृत्ति मनोव्यवहार बिल्कुल जैसे न्यारा प्यारा हो गया एकदम। और वो जैसे अपने कमरे में बैठना, वो जो करना था कुछ पार्टी वार्टी वो तो सब भूल ही गए, और बाबा अपने कमरे में बैठते थे और अपनी और ध्यान करते थे, विष्णु का ही ध्यान करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि बाबा को शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ अपने घर में, ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का बहुत भव्य सुंदर रूप वो साक्षात्कार में देखा और बाबा उसमें मग्न हो गए। और उसी समय बाबा ने अनुभव किया कि वो जो ज्योति थी, परम ज्योति, शिव परमात्मा की ज्योति, वो धीरे धीरे उनके नजदीक आई और नजदीक आते 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 उनके अंदर प्रवेश कर गए। ये बाबा ने देखा, ऐसे अनुभव हुआ कि वो सामने आकर के मेरे अंदर प्रवेश कर गए। और फिर एकदम प्रवेश कर गई और वो बिल्कुल मग्न हो गए। और उसी वक्त बाबा को, बाबा के मुख से शब्द निकलने लगे, जैसे आकाशवाणी उनके उनके मुख से निकली जो उनके परिवार वालों ने सुनी। और वो आकाशवाणी क्या थी, शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपना परिचय दिया, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। अब ये परिचय उनके मुख से उनको दिया और बाबा की आंखें तो बंद थी और मुख से ये आवाज निकली और गहरी आवाज, जो बाबा की आवाज नहीं थी लेकिन एकदम आकाशवाणी जैसे गहरी आवाज। और जब बाबा ने आंखें खोली तो बाबा से पूछा गया, क्योंकि सब देखने लगे ये बाबा को क्या हो रहा है, एकदम लाइट ही लाइट उनके आगे भी, उनके मस्तक पर इतना प्रकाश और आंखें भी एकदम जैसे लाइट का गोला बन गई। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, और वो प्रकाश वो शक्ति मेरे करीब आकर मेरे अंदर चली गई, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ बस। और उसके बाद चमत्कार होने लगे। कौन सा पहला चमत्कार हुआ? सबसे पहला चमत्कार ये हुआ कि बाबा को जो देखता था वो सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग व्यक्ति वो नहीं दिखाई देता था, लेकिन श्री कृष्ण का रूप उनके सामने खड़ा है, मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी श्री कृष्ण उनके सामने खड़ा है। बाबा को लगता था ये मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल खड़ा हूं, अब ये मुझसे साक्षात्कार कैसे कर रहे हैं। तो इतना मग्न हो जाते थे बाबा को देखते हैं, देखते देखते खड़े हैं, पर बाबा को कुछ लगता नहीं था कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये परमात्मा की शक्ति काम कर रही थी। और केवल उनके सामने जो आते थे वो ही नहीं, लोगों को घर बैठे भी साक्षात्कार क्या होने लगे, श्री कृष्ण के साक्षात्कार होने लगे। और श्री कृष्ण के जैसे नजदीक जा रहे हैं तो वो श्री कृष्ण दूर जा रहा है और ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी आगे खड़ा है। और श्री कृष्ण दूर से इशारे से कहता है, मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, मगर मेरे से मिलना है पहले इनके पास जाओ, इनके पास जाओ। अब ये कौन है ये तो सब नहीं जानते, उनको तो घर में ये साक्षात्कार होता था, तो ये कौन है ये पूछ पूछ के कैसे बाबा के पास आते थे। तो बाबा रोज सत्संग कराते थे, सत्संग करते थे, वैसे भी गीता का पाठ करते थे बाबा, और कई परिवार वाले और सब उनके साथ आते थे सत्संग करने, सुबह सुबह करते थे। लेकिन बाबा जो सत्संग करते थे अभी, तो वो ओम की ध्वनि करते थे और ओम ऐसे बहुत लंबी ध्वनि ओम, और जैसे बाबा ओम की ध्वनि करते थे जो सामने होते थे वो सब साक्षात्कार में चले जाते, ध्यान में चले जाते थे और उनको कृष्ण के दर्शन होते थे। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार था और ये इतनी बड़ी न्यूज बन गई उस समय 36 की न्यूज, जो विदेश में अमेरिका में टाइम मैगजीन निकलती है, वो इंटरनेशनल मैगजीन है, उस मैगजीन में भी न्यूज आई कि भारत में सिंध के, सिंध हैदराबाद में एक व्यक्ति है जिसके पास चमत्कारिक शक्ति है, जो भी उनको देखता है उनको कृष्ण के दर्शन होते, इतनी बड़ी न्यूज बन गई। तो ये पहला चमत्कार कहो या क्रांति कहो वो उस समय हुई और दूर दूर से लोग आने लगे। और दूसरी क्रांति क्या हुई कि उसमें माताएं बहनें उनको ज्यादा साक्षात्कार हुए, पुरुषों को कम हुए, माताओं बहनों कन्याओं को बहुत साक्षात्कार हुए। और उसमें सबसे पहले जो आई वो मम्मा थी, ओम राधे जिनको हम कहते हैं मम्मा। तो उस समय वो 17 साल की थी, उनके पिता ने शरीर त्यागा था तो उसकी माँ बहुत दुखी थी, बहुत रोती थी। और उस समय स्त्री एक शोषित नारी थी, उनके पास कोई भी सोशल एक्टिविटीज नहीं थी, केवल चार दीवारों में रहना उनका शोषण होता रहा, उनके आगे कोई प्रगति नहीं, बस केवल परिवार संभालना, बच्चों को संभालना। और जो पुरुष लोग थे वो तो बड़े बिजनेसमैन थे, सिंध वर्की उनको कहते थे, हैदराबाद सिंध में रहने वाले, उनकी बिजनेस सारी दुनिया में, और कभी कभी वापस सिंध आते थे अपने घर में, पर स्त्रियां सब चार दीवारों में। अब इनको साक्षात्कार हुए। अब मम्मा जो थी, इनका नाम राधे था, तो इनके फादर की डेथ हो गई, क्योंकि वो भी बिजनेस करते थे और अचानक उनको बिजनेस में घाटा पड़ा तो वो हार्ट फेल हो गया। तो इनकी जो माँ थी वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो किसी ने इनको कहा कि आप इनको बाबा के पास ले जाओ और वहां इनको शांति मिलेगी। तो जैसे ये बाबा के पास ले गई, उनकी माँ ने बाबा को देखा और एकदम हंसने लगी जोर जोर से। उनको श्री कृष्ण दिखाई दिया बाबा से। तो बस ये भी एक न्यूज बन गई, क्योंकि राधे जो थी वो बहुत होशियार लड़की थी और स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अवार्ड्स लिए थे उसने, यहाँ तक कि गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला सब में माहिर थी और उसमें उनको मेडल्स मिले थे। तो अपनी माँ को ये लेकर आई थी बाबा के पास। तो जैसे इनको साक्षात्कार हुए, माँ बेटी को नहीं हुए, माँ को हुए, और जैसे ही साक्षात्कार हुए तो बेटी तो बहुत खुश हो गई। तो बाबा जानते थे, क्योंकि इनका भाई भी ऐसे ही गुजर गया था, तो बाप भी गुजर गया, भाई भी गुजर गया, बस माँ और बेटी थी, और ये गरीब हो गए थे क्योंकि देवाला मार दिया था। तो बाबा ने उनको कहा कि आप यहीं हमारे पास रह जाओ। तो बाबा उस समय गीत बनाते थे, भजन बनाते थे, तो ये गाती थी क्योंकि सुरीली आवाज थी, तो इनके सब इनको सब आता था, तो हारमोनियम भी बजाती थी, सितार भी बजाती थी, ये सब उससे सीखा था। तो ये जैसे ओम की ध्वनि करती थी तो इनसे राधे का साक्षात्कार होने लगा, बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार और इनसे राधे का साक्षात्कार, और ये माँ बेटी दोनों समर्पित हो गई, बाबा के घर में आके रही। फिर दूसरी बहन जो दादी प्रकाशमणि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी, इनका नाम रमा था। ये भी 16 साल की थी, 14-15 मतलब उसी 10वीं कक्षा पढ़ रही थी। ये श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। इनके पिता ने जब इनकी जन्म पत्री निकाली थी तो यही बताया था कि ये मेरी बेटी मीराबाई बनेगी, अपना जीवन भगवान को अर्पित करेगी। तो वैसे ही इनकी ये थी, बहुत ही पवित्र शुद्ध आत्मा। अब इनको सवेरे सवेरे कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और जैसे उसके नजदीक गई तो सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, ये उनको अनुभव हुआ। ब्रह्मा बाबा सामने खड़े और श्री कृष्ण कहता, मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। तब तक तो चारों ओर सिंध के अंदर हैदराबाद में इतना आवाज फैल चुका था कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो इन लड़कियों ने जो स्कूल में पढ़ती थी, इन्होंने अंदर में बना लिया प्रोग्राम कि कल हम सब मिलकर जाएंगे वहां बाबा के पास जाएंगे। अब इसको जब कहा कि आप भी चलो, उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। तो जब पिता से पूछने वाली थी कि इनके पिता ने इनको कहा कि बेटी ये हमने सुना है एक दादा लेखराज है, उनके वहां जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम तो बहुत कृष्ण की भक्ति करती हो, गीता उसको कंठस्थ थी जैसे, तुम जाओ वहां जाकर देख कर आओ क्या होता है, जैसे बड़े छोटों को भेजेंगे भाई जाओ देख के आओ। तो फिर ये भी गई, और अगले दिन जब बाबा के सामने गई तो बाबा जैसे ओम की ध्वनि की, मम्मा भी थी, ओम की ध्वनि करते ही जैसे राधे कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। और बहुत देर तक वो बैठी रही एकदम मग्न होकर के। तो जब सब चले गए तो ये बैठी रही, और बाबा इनके पिता को जानते थे कि इनके पिता ने कहा मेरी बेटी जो है वो मीराबाई की तरह बनेगी, भगवान को अपना जीवन अर्पित करेगी। तो बाबा ने इनको बुलाया और कहा कि अपने पिता से पूछो कि मैं अपनी बेटी को समर्पित कर रहा हूँ, और उनको श्री कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। क्यों बाबा ने ये कहा? क्योंकि बाबा ने एक स्कूल खोला था उस समय, क्योंकि बाबा को था कि लड़कियों के लिए खास स्कूल होना चाहिए। बाबा को नारी जाति के लिए बहुत सम्मान था, तो लड़कियों के लिए स्कूल खोला ताकि उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी मिल सके, वो विद्या के साथ साथ ये आध्यात्मिक विद्या भी उनको साथ में मिल सके और गीता का ज्ञान उनको दिया जाए। तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि जो थी, उनका नाम रमा था, उनसे पूछा आप इस स्कूल में टीचर बनोगे और तुम गीता का ज्ञान दो? तो उसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। बाबा ने कहा चिट्ठी लिखा के लाओ कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पण कर रही हूँ। और पिता ने तो सहर्ष लिख दिया कि मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ। तो फिर तो वो भी वहीं रहने लगी। और इसी प्रकार और कितनी कुमारियां आई, छोटी छोटी कुमारियां, और स्कूल में जो पढ़ती थी वो सब कुमारियां, उनको भी बहुत साक्षात्कार हुए। तो जैसे एक बाबा का एक अलौकिक परिवार बन गया। अब उस अलौकिक परिवार में उनको पढ़ाई भी मिलती थी और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता था। तो फिर शिव परमात्मा ने एक और कार्य किया, तो दो क्रांति तो हो गई। पहली क्रांति थी साक्षात्कारों की और दूसरी क्रांति थी कि कन्याएं माताएं वो ज्यादा आए और परिवार के परिवार भी आए। और तीसरी क्रांति क्या हुई कि शिव परमात्मा ने ऐलान किया कि सबको प्रतिज्ञा करवाई। क्या प्रतिज्ञा करवाई? कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। हम अपने जीवन में जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की। अब इतनी छोटी छोटी कुमारियां थी, अब कुछ तो 18 साल से ऊपर भी थी, कुछ उनसे कम भी थी। पर जब ये प्रतिज्ञा की तो ये भी आवाज फैल गया चारों ओर कि दादा लेखराज ने क्या किया, इतनी छोटी लड़कियों से प्रतिज्ञा करवा दी, इन्होंने तो दुनिया भी नहीं देखी है और ऐसे कैसे प्रतिज्ञा करा दी। तो विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। लेकिन बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति है ही नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जब परमात्मा ने प्रतिज्ञा करने लिए कहा तो मैंने भी उस समय प्रतिज्ञा की, क्योंकि मैं भी परिवार में रहता हूँ, कोई परिवार को छोड़ के सन्यासी तो बना नहीं था, घर सब परिवार सब साथ में ही था। और ये भी ऐड हो गए और स्कूल भी चलता था जो कुमारियों का स्कूल। तो जब विरोध हुआ तो कुछ बहुत कुछ हुआ। तो बाबा फिर उस समय हैदराबाद सिंध से सारे परिवार को लेके कराची चले गए। कराची बड़ा शहर, हैदराबाद सिंध तो छोटा शहर था। तो कराची चले गए और कराची में 1937 से कराची में रहना शुरू किया। बड़े बड़े मकान किराए पर लिए और जो 18 साल से कम थे उनके फैमिली वाले कहे कि ये तो छोटे हैं, पर तू जो 18 साल से ऊपर थे उन्होंने कहा हम तो अपना जिम्मेदारी हम खुद उठा सकते हैं। तो उन्होंने वो फिर उसमें रहे और बाबा फिर कराची चले गए। और कराची में बाबा ने कई मकान लिए और रोज सवेरे सवेरे ये जो कन्याएं थी उनको जैसे ड्रेस मिली थी, शर्ट और शॉर्ट्स और वो सागर के किनारे जाती थी, जैसे मुंबई सागर का किनारे पर है वैसे कराची भी सागर के किनारे पर है। तो बहुत सुंदर स्थान है कराची में जिसको क्लिफ्टन बीच कहते हैं। तो वहाँ पर वो जाकर के तपस्या भी करती थी और साथ साथ एक्सरसाइज भी करती थी। ये कराची का क्लिफ्टन बीच है, जैसे भारत में जुहू बीच और वो कई बीचेस है ना कई सागर के किनारे, तो वहाँ पर था। और कैसे बाबा और मम्मा ये तो तपस्या कर रहे थे, तो मम्मा तो उस समय 18-19 साल की थी या तो थोड़ी उनसे भी छोटी, और बाबा तो 60 वर्ष के थे। अलौकिक में कोई संबंध नहीं था लेकिन अलौकिक माँ बन गई क्योंकि उसके अंदर जैसे माँ के गुण थे, पालना करने के बहुत अच्छे गुण थे। तो वो तो वैसे तो अलौकिक बेटी कहेंगे और शिव परमात्मा ने उनको नाम दिया जगत अम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी। तो जगत अम्बा सरस्वती हमारी अलौकिक माँ और प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक पिता, तो उन्होंने यज्ञ की पालना की और कराची में 14 साल तपस्या की। करीब 385 भाई बहने थे, 385, और 14 साल उन्होंने तपस्या की। तो बाबा तो यही कहते थे सारा एक अलौकिक परिवार है, और वो परिवार कराची में रहा और दुनिया का मुंह नहीं देखा 14 साल। अब सोच सकते 14 साल कोई कम समय नहीं है, और उन 14 सालों में दुनिया में परिवर्तन आ गया। पहला परिवर्तन क्या आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, 39 to 45, 6 साल तक विश्व युद्ध चला, और ये 37 से कराची में तपस्या कर रहे थे। तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और उस विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग, बहुत नुकसान हुआ। और वो विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान पर बॉम्ब गिराए, एटम बॉम्ब गिराया, और पूरा शहर का शहर तबाह हो गया। तब बाबा से पूछा गया शिव परमात्मा से, क्या यही विनाश है? बाबा ने कहा नहीं, ये विनाश नहीं है, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। विनाश तो बहुत बड़ी चीज होनी है, तो ट्रेलर आपने देखा। तो ये न्यूज तो थी। फिर दूसरा क्या हुआ, 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत का विभाजन हुआ, और ये पाकिस्तान में चले गए क्योंकि कराची सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो इन्होंने न्यूज तो मिलती है कि कैसे रक्त की नदियां बही, हजारों लोग मारे गए, क्या क्या हुआ वो तो कुछ तो न्यूज भी नहीं है, लेकिन बहुत तबाही हुई और गृह युद्ध का रूप हो गया था उस समय 1947 में जब बंटवारा हुआ। और उस बंटवारे के कारण कितने जो मारे गए, मानो इतना दुख। तो बाबा से पूछा गया, बाबा ये विनाश है? बाबा ने कहा ये भी ट्रेलर है, ये गृह युद्ध जो हुआ ये भी ट्रेलर है। तो अणु युद्ध का भी ट्रेलर देखा, गृह युद्ध का भी ट्रेलर देखा, और उन्हीं दिनों में प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई। क्वेटा एक शहर है, वो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में ही है क्वेटा, तो उस वो पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया, ये भूकंप में पूरा का पूरा शहर ही धरती के अंदर चला गया, मानो इतना भूकंप आया, सुनामी आई, बहुत कुछ हुआ। तो बाबा से फिर पूछा, बाबा ये ही विनाश? बाबा ने कहा नहीं, ये भी ट्रेलर है, मानो जो अणु युद्ध का ट्रेलर, गृह युद्ध का ट्रेलर, और फिर प्राकृतिक आपदाओं का ट्रेलर, ये तीनों ट्रेलर उन्होंने कराची में रह करके देखा, है ना, सुना, क्योंकि दुनिया से तो दूर थे। परंतु इनको आंच भी नहीं आई, क्योंकि उस समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन इन जहां ये रहते थे वहां सरकार ने बहुत बड़ा पहरा लगा दिया था ताकि कोई आतंक न फैलाए, क्योंकि वो भी एक देखो कैसी करामात थी कि बाबा उस समय जो सिंध का चीफ मिनिस्टर बना वो बाबा के बहुत बड़े मित्र थे, बाबा उसका जिक्र करते थे, उनका नाम था अल्लाह बख्श, अल्लाह जो बख्श करता है, जो माफ करता है, अल्लाह बख्श उसका नाम था। तो उन्होंने बाबा का ये जो संस्था थी उसके आगे पीछे पहरा लगा दिया ताकि कोई भी अंदर में ऐसे प्रवेश न करे, तो ये बिल्कुल सुरक्षित रहे, इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। आते थे कोई पूछते थे आप लोग कौन से धर्म के हो, क्योंकि उस समय वो स्थिति आ गई कि हिंदू है तो जाओ हिंदुस्तान, ये तो मुस्लिम देश बन जाएगा, अगर नहीं जाना है तो मुसलमान बन जाओ, अगर नहीं बनना है तो सर कलम कराओ, कत्ल कराओ, बस ओनली 3 बातें, चौथा कोई ऑप्शन नहीं कि हिंदू हो करके वहां रहो, नहीं ऑप्शन कोई ऐसा था। लेकिन इस संस्था को कैसे परमात्मा की छत्र छाया मिली और बाल बांका भी नहीं हुआ। और फिर जब 1950 में गणतंत्र हुआ, दोनों देशों को मना फाइनल हो गया कि ये दो देश, गणतंत्र हुआ, 26 जनवरी को, उसके बाद शिव परमात्मा ने संकेत दिया कि अभी भारत जाओ और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये शिव परमात्मा ने उस समय कहा था, भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बनकर के सारे विश्व को शांति का संदेश देगा। ये भी उस समय ये बाबा ने, शिव परमात्मा ने ये आदेश दिया। फिर ये पूछा गया कि विश्व गुरु तो बनेगा लेकिन फिर कैसे परिवर्तन आएगा, तो यहाँ तक शिव परमात्मा ने कहा पहले खून की नदियाँ बहेगी और खून की नदियाँ बहने के बाद दूध घी की नदियाँ बहेगी। ये भी संदेश में आया। लेकिन ये विश्व गुरु बनेगा इसीलिए भारत जाना, भी कहाँ जाना है भारत में, तो कहाँ रहेंगे। 385 भाई बहने थे तो ये भी संकेत मिला एक पहाड़ पर जाओ, क्योंकि कराची सागर का किनारा तो पहाड़ पर जाओ। तो ये जो माउंट आबू का पहाड़ है ये कराची से बहुत दूर नहीं है, ये पश्चिम बॉर्डर है, राजस्थान का पश्चिम बॉर्डर है। आप माउंट आबू जाएंगे वहाँ पर पीस पार्क जाएंगे तो वहाँ का जो अरावली ये पहाड़ है इनका जो हाईएस्ट टॉप है वो माउंट आबू में है, वो 6000 फीट ऊंचाई पर है। और तो वहाँ पर ही नज़दीक में वो आप देखेंगे कैसे नीचे पूरा शहर बसा हुआ है और वहाँ पहाड़ है, वो पहाड़ों के पीछे कराची है तो इसीलिए बहुत नज़दीक है। तो उसी हम लोगों को ये छुट्टी मिली कि आप सारा सामान ले जाओ, नहीं तो जो हिंदू आए सिख आए या जो भी आए वो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आए उनको शरण मिली तो वो कुछ भी लेकर नहीं आए, हाथ खाली नंगे पैर सब खाली, अपना सब कुछ छोड़ के आए क्योंकि जान बची लाखों पाए। परंतु इस संस्था को सब कुछ छुट्टी मिली कि आप ले जाओ सामान अपना, तो पूरा सामान देखो ये लेकर के आए और कुछ भी छोड़ा नहीं, एक सुई भी नहीं छोड़ी वहाँ, इतना सब कुछ वहाँ से ले आए। और एक जहाज भी उनको दिया गया कि आप इस जहाज में जाइए। तो माउंट आबू ये स्थान चुना। माउंट आबू की मैं आपको विशेषता बताऊं, माउंट आबू की इसकी विशेषता है कि ये जो राजस्थान के राजाएं महाराजाएं थे उनका ये समर कैपिटल था, गर्मी के दिनों में ये माउंट आबू में आके रहते थे 3 महीना, अप्रैल मई जून, गर्मी के 3 महीना। और ये चारों ओर महल बने हुए हैं, जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, अलवर पैलेस, भरतपुर पैलेस, ये सारे इसके सारे यहाँ राजाओं महाराजाओं के महल है और ये आते थे यहाँ, बहुत इनकी हिस्ट्री है बड़ी जबरदस्त। तो 3 मास यहाँ रहते थे, बहुत अच्छा मौसम होता था। और उसके बाद ये जुलाई अगस्त सितंबर बहुत बारिश, जो आप अभी आप देख रहे हो ना, फॉगी फॉगी सारा, कोई कपड़े नहीं सूखना कुछ नहीं, 3 महीना ये चलता था। फिर अक्टूबर से लेकर के इतनी ठंडी जो बात मत पूछो। तो बाबा को ये कहते थे कि बाबा आप हमको कहाँ ले आए हो, ये जहाज का दृश्य है, जहाज में बैठे हैं, शिप में बैठे हैं। और फिर माउंट आबू में आने के लिए ओखा बंदरगाह ये शिप उतरा, ओखा, तो ओखा ये सौराष्ट्र में ओखा बंदरगाह है, तो वहां से बाय ट्रेन आए। तो 1950 की ये ट्रेन देखिए, 1950 में उस समय ये रेलिंग वेलिंग ट्रेन में नहीं होती थी, तो 14 साल के बाद दुनिया देखी इन्होंने, 14 साल। और फिर आबू रोड उतरे। तो ये पसंद क्यों किया, शिव परमात्मा ने भी कहा कि यहाँ से विश्व में शांति जाएगी। और सचमुच ये माउंट आबू का पहाड़ इतना शांत प्रिय है जो बात मत पूछो। ये जो महल बनाए 1950 में, क्योंकि वो गणतंत्र बन गया, सारी राजाई खत्म हो गए, रजवाड़े खत्म हो गए, सब वो प्रजा पर राज्य आ गया, तो इनके ऊपर सीलिंग आ गई कि आप इतना सब नहीं रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ जो महल है वो या तो स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल है यहाँ और विदेश के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, दूसरा हॉस्टल्स है यहाँ जहाँ वो बच्चे रहते हैं, तो स्कूल है, हॉस्टल्स है और होटल है, कई तो महल होटल बन गए हैं। आप यहाँ माउंट यहाँ आप जैसे बाहर जाएंगे अलवर पैलेस है, अलवर राजा का राजा, ये आर्य समाजियों का स्कूल है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा इनको संस्कृत भी सिखाई जाती है, बहुत कुछ होता है, तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे ये चारों ओर माउंट आबू में है, तो माउंट आबू का उद्योग और कुछ नहीं है, टूरिज्म है और ये स्कूल और हॉस्टल्स और होटल, बस यही है माउंट आबू। तो कैसे यहाँ माउंट आबू में, बाकी तो जंगल ही है चारों ओर, तो ब्रह्मा बाबा बहुत तपस्या करते थे, मम्मा भी तपस्या करती थी, और ये तपस्या चारों ओर बाबा के बच्चों की चलती थी। तो 1950 में यहाँ आना हुआ और 52 में हमारा पहला केंद्र दिल्ली में खुला। तो ये तो पहाड़ों पर तपस्या कर रहे हैं बाबा मम्मा और बच्चे, और 1952 में हमारा पहला केंद्र दिल्ली में खुला। कैसे खुला वो भी एक कहानी है, मिसाल है कि क्योंकि भारत में आ गए तो जिनके रिश्तेदार वो पहले से ही भारत में आ गए थे, तो उनको पता चला कि ये संस्था यहाँ माउंट आबू में आई है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया, क्योंकि उनके बच्चे थे यहाँ, उनके माँ बाप हो गए, तो निमंत्रण मिला। तो उसमें से एक हम मिसाल दे रहे हैं, आपका नाम मनोहर इंदिरा था, तो आप भी 12 साल की आयु में आ गई थी और कोई बहुत साक्षात्कार हुए थे। तो इनके फैमिली दिल्ली में रहती थी, तो उन्होंने इनको बुलाया कि आपने इतना 14 साल तपस्या की है, आप हमें आकर के आपने जो सुना है वो हमें भी बताएं। तो बाबा ने इनको भेजा दिल्ली, और दिल्ली में जब अपने घर में गई तो घर में ये ओम की ध्वनि बहुत अच्छा करती थी, बहुत सुंदर, तो बहुत लंबा ओम की ध्वनि करती थी। तो जब घर में इसने ओम की ध्वनि की तो इसके घर वाले ने इतना सुंदर अनुभव किया, इनसे देवी का साक्षात्कार हुआ, देवी, और ये न्यूज फैल गई, अरे माउंट आबू से पहाड़ों से एक देवी आई है जिनसे देवी का साक्षात्कार होता है। तो मंदिरों से निमंत्रण मिला इनको कि आप आकर के हमारे आगे भाषण कीजिए। तो इतने बढ़ गए जो फिर जमुना के किनारे जाकर के ये करती थी, मानो कि वहाँ ज्ञान सुनाना इन्होंने शुरू किया, लेकिन सेंटर तो था नहीं, तो फिर ये वापस जाना चाहती थी, तो सब जो भाई बहने उनको इतना अच्छा लगा, ये सत्संग कराती थी, तो बाबा ने उन्होंने कहा कि आप यहाँ ही रह जाओ। तो बाबा ने इनको कहा कि अगर आपको कहते रह जाएं तो उनको को एक मकान लेके देवे। तो मकान लेना क्या बड़ी बात है, उन्होंने कहा हम लेके देंगे, और हमारा पहला सेवा केंद्र आबू से बाहर दिल्ली में खुला, ये 1952 में खुला। और उसके बाद तो कई स्थानों से निमंत्रण आए, और वहां से भाई बहने माउंट आबू आते थे, माउंट आबू में आकर के बाबा मम्मा से मिलते थे, और फिर मम्मा भी जाती थी, बाबा कम जाते थे, लेकिन मम्मा ने बहुत ट्रैवलिंग की, ये लखनऊ में गई है, और जहाँ भी जाती थी मम्मा उनसे भी बहुत साक्षात्कार होते थे लोगों को। फिर कानपुर में गई, और जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ सेवा केंद्र खुलते गए, यूपी में बहुत सेवा केंद्र खुले, तो कानपुर में भी खुला, लखनऊ में खुला, बहुत जगह खुला, और मम्मा के साथ दादी प्रकाशमणि ट्रैवल करती थी, तो वो भी जैसे 3/4 मम्मा की तरह थी बिल्कुल, दादी प्रकाशमणि भी, और वो भी इतनी तपस्या करती थी जैसे मम्मा करती थी, लेकिन मम्मा इतनी तपस्वी बन गई जो धीरे 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 वो अव्यक्त होती गई होती गई होती गई, और 24 जून 1965 को मम्मा ने अपना देह त्याग किया, एट द एज ऑफ 47, 47 साल की थी, और यहाँ माउंट आबू में पांडव भवन जहाँ मेन हमारा हेडक्वार्टर्स है वहाँ उन्होंने देह त्याग किया। और उसके बाद दीदी मनमोहिनी जी, ये भी शुरू किया, दीदी थी उनको हम दीदी मनमोहिनी कहते थे, तो ये बहुत धनी परिवार की थी, इनका पूरा परिवार विदेशों में रहता था। अब जब बंटवारा हुआ तो इनके जो रिश्तेदार थे वो भारत में आए, और मुंबई में उन्होंने कॉलेजेस खोले, कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोले, मुंबई में का प्रख्यात हॉस्पिटल है जसलोक हॉस्पिटल। तो जसलोक, जसुमती लोकुमल, ये इनके चाचा चाची थे, अनो उन्होंने खोला। और केसी कॉलेज, किशनचंद चेलाराम कॉलेज, ये सिंधी लोग जो कराची से आए थे, उन्होंने बॉम्बे में ये कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोले, उस परिवार की थी। तो उनको मुख्य प्रशासिका बनाया मम्मा के देह त्याग के बाद, क्योंकि पालना बाबा ने बहनों को ही दिया कराने करने के लिए। फिर बाबा भी जब निकलते थे, ये बाबा दिल्ली में गए हुए हैं, दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे बाबा के आगे कैसे एक गीत गा रहे हैं और कुछ एक्शन सॉन्ग कर रहे हैं। और फिर चारों तरफ से स्कूल सेंटर खुलते गए, वहाँ से भाई बहने माउंट आबू आते गए। ये जलंधर का बहुत बड़ा ग्रुप है, परिवार के परिवार माउंट आबू आते गए। ये सहारनपुर का है, सहारनपुर में भी सेंटर खुला। तो चारों ओर सेवा केंद्र हमारे खुलते गए और भाई बहने आते थे। तो अलौकिक पिता के रूप में ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर पाठ बजाया। ये दीदी जी तो माउंट आबू में रहती थी और दादी प्रकाशमणि वो बॉम्बे में रहती थी, मुंबई में। और जो महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में जो सेवा केंद्र थे उनका संचालन करती थी। और दीदी मनमोहिनी माउंट आबू में रह के नॉर्दर्न जोन जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान आदि उनका करते थे। तो बहुत सुंदर रूप से ये संचालन होता रहा, ये संस्था आगे बढ़ती रही। तो ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता के रूप में यही कहते थे कि परमात्मा को याद करो, हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई है, एक पिता परमात्मा की संतान है, तो यही मुख्य ज्ञान है। तो ब्रह्मा बाबा पत्र बहुत लिखते थे, बहुत पत्र, जो बाबा को पत्र लिखते थे बाबा भी उनको पत्र लिखते थे। क्योंकि हैदराबाद सिंध में रहे तो बाबा उर्दू लिखते थे, उर्दू, सिंधी भाषा भी उर्दू की तरह ही है। तो फिर एक बहन उसका हिंदी अनुवाद करती थी। तो पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा के नाम पर चार धाम हैं, जैसे भारत में चार धाम की महिमा है, तो पांडव भवन में आप जाएंगे तो ये चार धाम आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा के। एक धाम है ब्रह्मा बाबा की झोपड़ी, बाबा इस झोपड़ी में दिन में आते थे और पत्र लिखते थे, और किसी से इंडिविजुअल मिलना होता था तो बाबा इस झोपड़ी में मिलते थे। वो सिंपल होती थी, लेकिन बाबा के देह त्याग के बाद इसको परमानेंट बना दिया है। ये पेड़ों इनके साथ, ये खजूर के जो पहले खजूर के पेड़ों के जो पत्ते थे उनसे बाबा बनवाते थे, फिर तो बांस की लकड़ियों से इसको परमानेंट कर दिया। तो इस झोपड़ी के आसपास भी बगीचा है, बहुत ही सुंदर शांति का वातावरण है। और फिर दूसरा है ये हिस्ट्री हॉल, जिस हिस्ट्री हॉल में बाबा आकर के वाणी चलाते थे, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। वहाँ चारों ओर चित्र है, संस्था के चित्र है चारों तरफ। और तीसरा है बाबा का कमरा, जो मेडिटेशन रूम के रूप में है, जहाँ बाबा ने बाबा अव्यक्त हुए वहीं पर 18 जनवरी को अपने कमरे में। तो ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए, एट द एज ऑफ 93 वर्ष की उम्र में बाबा ने अपना देह त्याग किया। और इस उम्र में भी बाबा ने कभी चश्मा नहीं पहना, कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, कभी बाबा की कमर नहीं झुकी। आप सोच सकते हैं अंत तक कैसे बाबा फिट थे, और ये तो एक सेकंड का खेल था। और कैसे बाबा अव्यक्त हुए 93 वर्ष की उम्र में। और ब्रह्मा बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार पांडव भवन के अंदर ही किया गया है, और उस स्मारिका का नाम है शांति स्तंभ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा यही कहते थे, अभी तुमको शांति स्तंभ की तरह बनना है। जैसे प्रकाश का स्तंभ चारों ओर प्रकाश फैलाता है, वैसे आपको भी शांति स्तंभ बनकर चारों ओर शांति का ही वाइब्रेशन फैलाना है। तो वो प्रकाश शांति स्तंभ है, जहाँ हजारों लोग आते हैं हर 18 जनवरी को और ब्रह्मा बाबा को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तपस्या करते हैं, तो ये पांडव भवन में शांति स्तंभ है। तो ब्रह्मा बाबा के चार धाम, प्रकाश शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, साथ में हिस्ट्री हॉल और बाबा की झोपड़ी। तो ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद दादी प्रकाशमणि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, मुख्य प्रशासिका। दादी प्रकाशमणि 38 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, 69 से 2007 तक, और 38 साल और 85 साल की उम्र में दादी जी ने देह त्याग किया। लेकिन दीदी मनमोहिनी तो यही थे, तो दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि, दीदी और दादी हम कहते थे, दादी माना बड़ी बहन, तो दीदी और दादी दोनों ने मिल करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इतना आगे किया, दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस संस्था की प्रगति हुई। और इनको हम कहते थे ये दो शरीर है लेकिन एक आत्मा है, दो हंसों का जोड़ा, इन्होंने मिल करके इस संस्था को कैसे आगे बढ़ाया। और उनके साथ साथ और भी सब कई दादियां थी जो उस समय वो छोटी छोटी थी, तो ब्रह्मा बाबा के बाद वो सब दादियां माना बड़ी बहनें, इन्होंने अलग अलग जोन्स बनाए और जोन्स में वो आप रहते थे, और पूरे भारत में इन्होंने ब्राह्मण करके कैसे सेवाएं की, ये सब हमारी पुरानी दादियां थी। और फिर 1972 में हमारा पहला केंद्र विदेश में खुला, लंदन में खुला, और ये 74 में पहला ग्रुप लंदन से माउंट आबू आया है, तो ये उसका ग्रुप है, उसमें बहुत सारे विदेश के भाई बहने भी है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है इसीलिए आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। और 1983 में जहाँ पांडव भवन है उसके सामने एक बहुत बड़ा ओम शांति भवन है, वहाँ यूनिवर्सल पीस हॉल है जहाँ 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं। और इसी हॉल में 87 में हम लोगों ने बहुत बड़ा संत सम्मेलन किया था, जैसे अभी संत सम्मेलन है वैसे बहुत बड़ा संत सम्मेलन किया था, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, कई जगह से संत महात्माएं आए थे। तो बहुत सुंदर फोटोग्राफ है, ये सफेद वस्त्रधारी और गिरवे वस्त्रधारी, कितने आपस में इतना संगम समागम हुआ है। तो ये 1983 में हमारा ये स्थान बना, पांडव भवन के सामने ही है। और ये जो ज्ञान सरोवर है ये 81 में ये जमीन मिली थी हमें, बहुत बंजर जमीन थी, और हम लोगों ने इतना सुंदर ये भव्य कॉम्प्लेक्स बनाया है, पर एक पेड़ नहीं काटा है, एक पहाड़ नहीं तोड़ा है, इसकी इकोलॉजी को मेंटेन किया है, आप देख रहे इसलिए ऊपर नीचे है, लेकिन बहुत सुंदर रूप से ये ज्ञान सरोवर बना जहाँ हमारी एकेडमी है, हर एक वर्ग की के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। फिर 91 में ही हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल बना जो पांडव भवन के से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये ज्ञान सरोवर 4 किलोमीटर की दूरी पर है पांडव भवन से। इस हॉस्पिटल में हमारी बहुत पैथीज है और हम लोग गांव-गांव में जाकर के सेवा करते हैं, 50% जो इनके डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, तो ये भी बहुत विस्तार है, वो भी आप देखेंगे। और 96 में नीचे आबू रोड तलहटी जिसको कहते हैं, वहां पर अपना बहुत भव्य परिसर बना, और डायमंड हॉल जिसको हम डायमंड जुबली हॉल कहते हैं वो बनाया गया, जहां 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं, और विदाउट पिलर्स, ये 20,000 भाई बहनों के बैठने का स्थान है, एशिया में नंबर 1 है विदाउट पिलर्स, आप सोच सकते हैं, और हजारों भाई बहने आते हैं। और दादी प्रकाशमणि जी ने कैसे 38 साल तक सेवा की, और नीचे शांति वन का बहुत बड़ा विस्तार किया। दादी प्रकाशमणि ने 25 अगस्त 2007 को अपना देह त्याग किया, और नीचे शांति वन में उनकी याद में स्मारिका बनाई गई है जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। समाधि है जिसको हम प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो पांडव भवन में शांति स्तंभ है और शांति वन में प्रकाश स्तंभ है दादी प्रकाश की याद में। और फिर उसके बाद दादी जानकी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी जो 104 साल जीवित रही। 2020 में आपने अपना देह त्याग किया और 104 साल की उम्र में दादी ने दुनिया का भ्रमण किया, जो विदेशों में हमारे सेवा केंद्र इतने खुले दादी जानकी के कारण। वो उस समय 20 साल की थी जब आई और बहुत समर्पित रूप से कैसे सेवाएं की चारों ओर। दादी जानकी जी नीचे जो शांति वन है हमारा ट्रेनिंग सेंटर है कुमारियों के लिए, टीचर्स के लिए प्रशिक्षण केंद्र है, तो वहाँ पर भी हजारों बहनें प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी भी चल रहा है नीचे, जो 2 साल से 10 साल तक की समर्पित टीचर्स बहनें हैं उनके लिए प्रशिक्षण चल रहा है। तो दादी जानकी जी वहाँ वो कराती थी उनकी उनका ट्रेनिंग। और 1 लाख की सभा में भी दादी जानकी जी जाकर प्रवचन देते थे। तो 2020 में आपने 104 साल की उम्र में देह त्याग किया। फिर उनके साथ दादी हृदय मोहिनी थे जो जिनका नाम रमा था, जिनका नाम शोभा था। शुरू में 9 साल की आयु में आई, जैसे ही ये बाबा के पास आई इनको सबसे पहले श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ 9 साल की उम्र में। तो 95 इयर्स की उम्र में 2021 में आपने देह त्याग किया। मुख्य प्रशासिका थी, आपकी विशेषता थी आप बहुत ट्रांस में जाती थी और शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रविष्ट होते थे और प्रवेश होकर के वाणी चलाते थे। उनको हम अव्यक्त बाप दादा कहते थे और अव्यक्त बाप दादा की वाणी हम सुनते थे। अब ये भी हम प्रसार करते थे हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल पर और भी। तो पता नहीं आप लोगों में से ये प्रोग्राम देखा है या नहीं, जिन्होंने देखा है हाथ उठाएं। अच्छा, आपने भी देखा है, वेरी गुड। तो वो हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। और अभी हमारी अन्य दादी है दादी रतन मोहिनी जी जो इस समय मुख्य प्रशासिका है, उनकी भी आयु 100 साल है। वो भी 9-10 साल की उम्र में ही इस संस्था में आई तो अभी 100 साल की है। लेकिन कार्य तो भगवान का है, कोई मनुष्य का तो कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य चल रहा है। हमें याद तो एक शिव परमात्मा को ही करना है जिसकी याद से ही फिर से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है और सचमुच हम मानव से देव बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समाप्त करेंगे 2 मिनट।